पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष भारतीय राजनीतिक आंदोलन अध्याय होम रूल लिंग। भारत में होम रूल आंदोलन के विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका पर टिप्पणी लिखें। 1914 तक आते आते भारतीय राजनीति का स्वर बहुत धीमा पड़ गया था। नरमवादी लोग का जनता पर बहुत कम प्रभाव रह गया था तथा वे केवल विचार व्यक्त करने वाली संस्थाएं जो बार बार क्राउन के प्रति अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करती रहती थी। उग्रवादी दल भी छिन्न भिन्न हो गया था। उसके प्रमुख नेता या तो जेल में सजा काट रहे थे या देश से निष्कासित थे। ऐसे नाजुक समय में देश के अंदर होम रूल का आंदोलन विकसित हुआ। भारत में होम रूल आंदोलन को जन्म देने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है, जो एक थियोसोफिस्ट थी तथा 1883 में थियोसॉफी के प्रचार हेतु भारत आई थी। उसका मानना था कि मानवता की आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना भारत का मिशन है, किंतु इस मिशन को एक परतंत्र भारत पूरा नहीं कर सकता, अतः आवश्यकता है कि भारत स्वायत्त साथी हो। बेसेंट ने आयरलैंड की तरह पर भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाने का निश्चय किया। ऐसा आंदोलन चलाने से वह तो एक ओर नरम दल व तिलक के साथियों में एकता का प्रयास करने लगी, दूसरी ओर होम रूल के विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए 1915 में न्यू इंडिया तथा कॉमन बिल नामक समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया। उसकी मांग थी कि जिस तरह अन्य उपनिवेश में वहां की यूरोपियन जनता को अपनी सरकार स्वयं चलाने का अधिकार है, उसी तरह भारत की सरकार चलाने का अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। 1914 में तिलक भी बर्मा के मानले जेल से सजा काट कर वापस आ गए थे। आते ही तिलक ने कांग्रेस के अंदर एकता के प्रयास किए तथा अपनी स्वराज की पुरानी मांग को छोड़कर आंतरिक स्वशासन की बात करने लगे। उन्होंने कहा, मैं साफ साफ कहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहां के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। 15 दिसंबर में तिलक था कांग्रेस दिसंबर 1915 में तिलक था बेसेंट कांग्रेस के अंदर एकता स्थापित करने में सफल रहे, परंतु कांग्रेस की एक संस्था के रूप में होम रूल के गठन को मंजूर न करवा सके। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध को प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई बताने वाले मित्र राष्ट्रों से जो उम्मीद भारतीय नेताओं ने लगा रखी थी, परंतु जब भारतीय अपना तन मन धन लगाकर भी साम्राज्यवादी शासकों से कुछ नहीं पा सके तो आशा का स्थान असंतोष, आक्रोश तथा बेचैनी ले लिया। इसी असंतोष को संघर्ष की दिशा में प्रवाहित करने के उद्देश्य से तिलक तथा बेसेंट ने कार्य करना प्रारंभ किया। तिलक ने इसी उद्देश्य सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। 1917 तक इस लीग की सदस्य 19,000 तक था, 1918 के आरंभ में 32,000 हो गए। दूसरी ओर एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की तथा उन्होंने को इस संस्था का सचिव बनाया। 1917 में एनी बेसेंट के लीग में 27,000 सदस्य थे। तिलक तथा बेसेंट के अलग अलग नेतृत्व में गठित होम रूल को लेकर जनता में कोई भ्रम न हो, इसलिए दोनों ने अपने कार्य क्षेत्र बांट लिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार में तिलक की लीग तथा अन्य प्रांतों में बेसेंट की लीग ने काम करना आरंभ किया। तिलक तथा बेसेंट ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए आंदोलन को जारी रखा, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों ने अपनी लीग का आपस में विलय नहीं किया। इस संबंध में बेसेंट का कहना था, उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते तथा मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे। मेरे तथा तिलक के बीच कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन अपने अधिकारों को पाने का आंदोलन था। जैसा कि तिलक ने कहा, मैं भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा यह है कि बाप या पालक इस बेटे को सब बाजी भक दे दे। तिलक ने इसके प्रचार के लिए मराठी भाषा में 6 तथा अंग्रेजी में 2 पर्चे छपाकर हजारों की संख्या में अपने नीतियों को प्रचार के लिए बांटा। होम रूल की मांग के साथ तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा क्षेत्रीय प्रांतों की मांग को भी सामने रखा। तिलक ने इस बारे में कहा, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ व अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन के मांग का अर्थ यह शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय हो। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक प्रचार की आवश्यकता थी। सभाओं का आयोजन, भाषण, छोटी छोटी पुस्तिका प्रकाशित करवाकर उन्हें नगरों तथा गांवों में जनता तक पहुंचाना, स्त्रियों तथा विद्यार्थियों को यह प्रेरणा दी गई कि वे स्वशासन का संदेश जन जन तक पहुंचाए। होम रूल आंदोलन को शीघ्र ही दमन का शिकार होना पड़ा। सरकार ने तिलक को 23 जून 1916 में कारण बताओ नोटिस देकर पूछा जाए कि क्यों न उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तिलक को 60,000 के नीचे मुचलके पर भरने को कहा गया। इससे जनता की सहानुभूति आंदोलन से जुड़ गई। इस संबंध में तिलक का विचार था, अब होम रूल आंदोलन आग की तरह फैलेगा, सरकारी दमन आंदोलन को आग को और भड़काएगा। बेसेंट की होम रूल लीग आकार तथा विस्तार की दृष्टि से तिलक के लीग से बड़ी थी, परंतु उनमें वो सांगठनिक शक्ति न थी जो कि तिलक के लीग में थी। लीग का सारा बोझ वस्तु बेसेंट, अरुंडेल, रामास्वामी, बाडिया आदि पर था। उन्होंने पर्चे बांटे, अखबार निकाले, पुस्तकालयों की स्थापना की। सरकार के दमनात्मक कार्यवाहियों से यह लीग भी न बच पाई तथा बेसेंट को मध्य प्रांत तथा बरार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 1917 के आरंभ में होम रूल आंदोलन ने वह तेजी पकड़ी जिसमें इसने कांग्रेस के नरम पंथियों को भी शामिल कर लिया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव ने सरकार को बौखला दिया। उसने दमन चक्र में निरंतर तीव्रता आती गई। मद्रास सरकार ने छात्रों को राजनीतिक सभाओं में जाने से प्रतिबंधित कर दिया। बेसेंट बारडिया और नुंडेल को नजरबंद कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में मालवीय सेन बनर्जी जिन्ना आदि लोगों लीग में शामिल हो गए तथा उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। तिलक ने कांग्रेस से आह्वान किया कि वह सहयोग आंदोलन चलाने के लिए तैयार हो जाए। लीग का पतन। अपने कार्य की तीखी आलोचना ने अंग्रेज सरकार को चिंतित कर दिया तथा जन आक्रोश को शांत करने के लिए सुविधा देने की नीति का अनुसरण किया। 1917 के अगस्त में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, ब्रिटिश शासन की नीति है कि भारत प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। बेसेंट को नजरबंद करने के कारण आंदोलन से जनभावनाएं जुड़ी। वह सितंबर 1917 में बेसेंट को रिहा करने के साथ उत्साह ठंडा पड़ गया। सरकार की नई नीति ने होम रूल लीग को कमजोर करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बेसेंट की रिहाई तथा अगस्त की घोषणा के बाद आंदोलनकारी निष्क्रिय हो गए तथा बेसेंट को सुधारों का समर्थन कर आंदोलन से अलग हो गई। दूसरी तरफ तिलक वेलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा के लिए इंग्लैंड चले गए। इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया तथा आंदोलन धीमा पड़कर इतिहास के पन्नों में खो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में होम रूल लीग का स्थान या महत्व। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में होम रूल लीग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब उदारवादी अपनी राजभक्ति की भावनाओं में पूरी तरह डूब चुके थे तथा उग्रवादी तितर बितर हो चुके थे, ऐसे समय में इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को निरंतरता बनाए रखा। होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक विस्तारित क्षेत्र में प्रसार किया। इसे स्त्रियों ने बहुत संख्या में भाग लिया तथा विद्यार्थियों ने इसकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया। बंगाल में इस आंदोलन को स्वयंसेवी आंदोलन की तरह धार्मिक स्वरूप मिला। इस आंदोलन ने अलग अलग थलग पड़े तिलक तथा आयरिश महिला बेसेंट को राष्ट्रवादियों की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। बेसेंट को दिसंबर 1917 के कोलकाता कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया तथा इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप नरम दल तथा गरम दल वाले ने एक संस्था के अंदर काम करने का निश्चय किया। होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाया। लीग की शाखाएं न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को आदि में थी, जहां से भारत के प्रति समर्थन जुटाने का कार्य होता था। होम रूल लीग के स्वशासन के प्रचार का साम्राज्यीय शक्तियों के सोचने पर भी प्रभाव पड़ा। मॉन्टेग्यू सुधार 1917 की घोषणा का कारण होम रूल लीग आंदोलन का दबाव ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रथम बार इस आंदोलन ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया तथा उसमें जागृति लाई। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष के लिए यशपाल और ग्रोवर की पुस्तक से सुजीत कुमार हेतु की गई है।